ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार द्वारा पिछले वर्ष हटाए गए बस मार्शलों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की फिर से बहाली प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और परिषद के सदस्यों को उनके पद की शपथ ग्रहण करवाई। दिल्ली सरकार शहर में पीने के पानी के टैंकरों और सीवरों की सफाई को पारदर्शी बनाने के लिए जीपीएस मॉनिटरिंग पोर्टल से निगरानी करेगी और भारत के 7 शैक्षणिक संस्थानों ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 की सूची में जगह बनाई। आईआईटी दिल्ली को 44वां स्थान प्राप्त हुआ। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में लगातार गिरावट जारी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता। दिल्ली सरकार द्वारा पिछले वर्ष हटाए गए बस मार्शलों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की फिर से बहाली की जाएगी और उन्हें शहर के प्रदूषण विरोधी उपायों को लागू करने के काम में लगाया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने 10,000 CDV की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि सभी CDV को 4 महीने के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें शहर में प्रदूषण हॉटस्पॉट के प्रबंधन, धूल प्रदूषण और कचरा जलाने को रोकने जैसे कामों के लिए तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। सुश्री आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा की राजनीति के कारण बस मार्शलों और CDV को अपना रोजगार गंवाना पड़ा था।
मुझे खुशी है इस बात की कि बस मार्शल्स के और आम आदमी पार्टी के विधायकों के नेताओं के संघर्ष के सामने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और इन बस मार्शल्स को फिर से नियुक्त करने के लिए तैयार होना पड़ा। मैं आज बस मार्शल्स को एक खुशखबरी देना चाहती हूं कि आने वाले कुछ ही दिन में उनकी स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाएगा, लेकिन जब तक उनकी स्थायी नियुक्ति नहीं होती, फरवरी के महीने तक इन सब बस मार्शल्स को पोल्यूशन के खिलाफ जो मुहिम दिल्ली सरकार ने चलाई है उसमें लगाया जाएगा।
वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली सरकार सभी CDV को उपराज्यपाल के आदेश के अनुरूप 1 नवंबर से वेतन दे। श्री सचदेवा ने कहा कि भाजपा द्वारा इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाए जाने के कारण मुख्यमंत्री आतिशी को बस मार्शलों की बहाली का आदेश देना पड़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सभी CDV की ड्यूटी 1 नवंबर से लगाने का आदेश दिया था।
लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद और हमारी पूरी पार्टी और माननीय उपराज्यपाल जी से भी हमने निवेदन किया था और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए दिल्ली की सरकार को ये आदेश दिया था कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को 1 नवंबर से बहाल किया जाए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री फिर भी टालमटोल करते रहे। उसके बाद भी लगातार हम लोगों ने प्रदर्शन किया, दबाव बनाया, उसका परिणाम यह है कि आज दिल्ली की सरकार को ये घोषणा करनी पड़ी कि 11 नवंबर से वो इन मार्शल्स को बहाल करेंगे।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और परिषद के सदस्यों को उनके पद की शपथ ग्रहण करवाई। NDMC के पुनर्गठन के बाद अध्यक्ष पद पर केशव चंद्रा और उपाध्यक्ष पद पर कुलजीत सिंह चहल को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक वीरेंद्र कादियान सहित कई अन्य सदस्यों को सदस्य पद पर नियुक्त किया गया है। नए पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उपराज्यपाल ने कहा है कि वो दिल्ली के विकास की दिशा में बेहतर काम करने के लिए सभी के सफल कार्यकाल की कामना करते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आतिशी भी उपस्थित रहीं। शपथ ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री चहल ने कहा है कि वो दिल्ली की जनता के विकास कार्यों के लिए काम करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार शहर में पीने के पानी के टैंकरों और सीवरों की सफाई को पारदर्शी बनाने के लिए GPS मॉनिटरिंग पोर्टल से निगरानी करेगी। एक रिपोर्ट।
दिल्ली जल बोर्ड के मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से पानी के टैंकरों और सीवर सफाई मशीनों को जीपीएस के जरिए ट्रैक किया जाएगा। पोर्टल पर रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ अधिकारी सुनिश्चित कर सकेंगे कि पानी के टैंकर निश्चित समय और निर्धारित स्थान पर आपूर्ति के लिए पहुंच सके। साथ ही सीवर सफाई मशीनों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। निगरानी के जरिए किसी भी प्रकार की खामियों को दूर करते हुए लोगों को समय पर सेवाएं दी जा सकेगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने इसके बारे में कहा कि पानी के टैंकरों और सीवर सफाई मशीनों की निगरानी के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी पानी के टैंकर और सीवर सफाई मशीनें अपने निर्धारित मार्गों पर रहे तथा समय पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करें। प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
राजधानी के रोहिणी सेक्टर 7 स्थित पानी की पाइपलाइन में फ्लो मीटर लगाए जाने के कारण सोमवार शाम को रोहिणी के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार जिन क्षेत्रों में पानी नहीं आएगा उनमें रोहिणी सेक्टर 6, 7 और 8 शामिल हैं। जल बोर्ड ने नागरिकों को सलाह दी है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए वे पर्याप्त मात्रा में पानी भरकर रख लें। पानी के टैंकर मंगवाने के लिए जल बोर्ड की हेल्पलाइन 1916 और 1800117118 पर संपर्क किया जा सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में रन फॉर इंक्लूजन मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा किया गया था। इस मैराथन का उद्देश्य स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बॉची और बॉलिंग प्रतियोगिता की तैयारी करना था। ये प्रतियोगिता 18 से 23 नवंबर तक नई दिल्ली में होगी। मैराथन में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी द्वारा त्योहारों के बाद दिल्ली लौट रहे यात्रियों की सुविधा के लिए आज से सोमवार तक सुबह के समय अतिरिक्त मेट्रो रेलों का परिचालन किया जा रहा है। डीएमआरसी ने बताया है कि आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर सुबह पहली मेट्रो 6 बजे के बजाय 5:30 बजे से उपलब्ध है। वहीं नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रेल सेवाओं का परिचालन सुबह 5:45 के बजाय 5:15 से किया जा रहा है। पूर्वी मध्य रेलवे भी छठ पूजा के बाद बिहार से वापस आने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अगले 15 दिन के दौरान 446 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। देश भर में विभिन्न शहरों से लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए इन विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कल से शुरू हो गया। आकाशवाणी के साथ बातचीत में रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इस वर्ष यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में 70 से अधिक अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। श्री चंद्र ने कहा कि पूर्वी मध्य रेलवे उत्तरी भारत में नई दिल्ली और आनंद विहार जैसे प्रमुख स्टेशनों के अतिरिक्त पश्चिमी और दक्षिणी भारत से वापस आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भी कई रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। सरकार ने हज यात्रा को सुगम बनाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार कर कई कदम उठाए हैं। इन कदमों के माध्यम से महिलाओं की समानता को बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि अधिक महिलाएं स्वतंत्र रूप से हज यात्रा पर जा सकती हैं। विशेषकर कम आय वाले लोगों के लिए हज यात्रा को सुगम बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। आज देशभर में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जा रहा है। लोगों में कानून के प्रति जागरूकता लाने और सभी नागरिकों विशेषकर हाशिए पर रह रहे समुदायों के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। एक समान समाज के निर्माण के लिए कई परियोजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए तंत्र को बढ़ावा देने तथा लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नागरिकों को कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने टोल फ्री नंबर 15100 शुरू किया है। फरीदाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋतु यादव ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना करने वाले लोग इस नंबर पर कॉल करके घर बैठे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सुश्री यादव ने बताया कि टोल फ्री नंबर पर समाज के कमजोर, वंचित और असहाय वर्ग के जरूरतमंद लोगों को कानूनी सलाह अब आसानी से मिल सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारत के 7 शैक्षणिक संस्थानों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के शीर्ष 100 संस्थानों की सूची में जगह बनाई है। इनमें से 2 संस्थानों का नाम शीर्ष 50 में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली को 44वां और IIT बॉम्बे को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि यह उपलब्धि महाद्वीप में भारत की उच्च शिक्षा में प्रगति को दर्शाती है। इस सूची में IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान IIS, IIT कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विकसित राष्ट्र का लक्ष्य हासिल करने में शोध और नवाचार मुख्य तत्व हैं। शोध और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्र का उच्च स्तर वैश्विक समुदाय के बीच उसकी स्थिति परिभाषित करता है। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 4th दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि शैक्षिक संस्थानों को शोध और नवाचार के लिए अपनी क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। श्री धनखड़ ने कॉरपोरेट जगत से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि व्यापार, उद्योग, कारोबार और वाणिज्य संगठनों को शोध और नवाचार के लिए उदारता से वित्तीय योगदान देना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा में निवेश समाज सेवा का महत्वपूर्ण उपकरण है, जिससे मानव संसाधन समृद्ध होता है और वर्तमान तथा भविष्य सुरक्षित बनता है।
एजुकेशन इज सर्विस टू सोसाइटी एंड द बेस्ट वे टू पे बैक टू द सोसाइटी इज टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, इन्वेस्टमेंट इन आवर प्रेजेंट, इन्वेस्टमेंट इन आवर फ्यूचर।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा वास्तव में समाज सेवा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा को व्यापार के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक कर्तव्य है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दोपहर के समय राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 353 दर्ज किया गया। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति और प्रभावशीलता की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली सरकार के प्रमुख विभागों और एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आयोग द्वारा जारी निर्देशों को सभी संबंधित विभागों, प्राधिकरणों और एजेंसियों द्वारा सख्ती से लागू करने पर बल दिया गया।
बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के बाद उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा धूल को कम करने के लिए सड़कों की मशीनों से नियमित सफाई, सड़कों पर पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन का उपयोग किया जाए। बैठक में आयोग ने विभिन्न एजेंसियों से संबंधित लंबित शिकायतों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता व्यक्त की। आयोग ने कहा कि हर मामले का निपटान तत्काल किया जाना चाहिए। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार द्वारा पिछले वर्ष हटाए गए बस मार्शलों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की फिर से बहाली प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के नए अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद की शपथ ग्रहण करवाई। दिल्ली सरकार शहर में पीने के पानी के टैंकरों और सीवरों की सफाई को पारदर्शी बनाने के लिए GPS मॉनिटरिंग पोर्टल से निगरानी करेगी। भारत के 7 शैक्षणिक संस्थानों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 की सूची में जगह बनाई। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में लगातार गिरावट जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त।